हालेलुया। बाइबल में तीन किस्म के चुनाव या इलेक्शंस कह लें, ठीक है। नंबर वन, थियोक्रेटिक इलेक्शन, यानी खुदा का जो के इसराइल के लिए प्लान था, इसको स्तिसना या इसको कह लें आप डिटॉर्नमी चैप्टर 14:2, ठीक। अब सेकंड पेज में कि जिसका मतलब है, उन्होंने खुदा ने बनी इसराइल कौम को चुन तो लिया, लेकिन सेल्वेशन की कोई गारंटी नहीं दी, ठीक है। सो आप पहले ये देख लें, डिटॉर्नमी चैप्टर 14:2, और सेल्वेशन की कोई गारंटी नहीं दी गई, जरमाया 7:23 के मुताबिक, ओके। अब ये दो हवाले आप पढ़ लें, जिसमें आप इंग्लिश में पढ़ दें, मैं उर्दू में पढ़ दूँ।
अच्छा,
उर्दू में लिखा हुआ है कि किस तरह खुदा ने बनी इसराइल को सारी कौमों में से चुन लिया। डिटॉर्नमी स्तिसना 14:2 में लिखा है, क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा की मुकद्दस कौम है, और खुदावंद ने तुझको रूए ज़मीन की और सब कौमों में से चुन लिया ताकि तू उसकी खास कौम ठहरे। इंग्लिश में पढ़ दो।
For you are a holy people to the Lord your God, and the Lord has chosen you to be a people for himself, a special treasure above all the peoples who are on the face of the earth.
अब सेल्वेशन की इनको गारंटी नहीं दी गई, उसका हवाला है जरमाया 7:23, ठीक है
जी।
या ये नहीं कि ऑटोमेटिकली उनको सेल्वेशन भी मिल गई, नो, ठीक है।
जरमाया 7:23
अच्छा, यर्मिया 7:23 में लिखा हुआ है, हालेलुया, उसमें यर्मिया 7:23 में लिखा है, बल्कि मैंने उनको ये हुक्म दिया, किनको, बनी इसराइल को, और फरमाया कि मेरी आवाज़ के शिनवा हो, और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा और तुम मेरे लोग होगे, और जिस राह की मैं तुमको हदायत करूं उस पर चलो ताकि तुम्हारा भला हो, ओके।
तो इसमें कैसे पता चलता है कि सल्वेशन की गारंटी नहीं?
हाँ, निजात का इससे कोई तल्लक नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली वो समझ ले। ये लिख लो, फिर एक वर्स और देते हैं आप।
लिख लिया।
अब सेकंड लिख लो कि वोकेशनल इलेक्शन, नंबर दो, यानी किसी काम के लिए खुदा ने चुना है, जैसा कि खुदा ने लेवाइज के कबीले को, लावी के कबीले को कहानत या प्रीस्ट के लिए, प्रीस्टली मिनिस्ट्री के लिए बुलाया, और इनको भी कोई गारंटी, निजात की कोई गारंटी नहीं दी गई, ठीक है। और इसके साथ इसी में लिख लो कि जीसस ने 12 अपॉस्टल्स, इसी में ये वोकेशनल इलेक्शन मतलब काम के लिए जीसस ने भी तो अपॉस्टल चुने, ठीक है, लेकिन 11 ही को सेल्वेशन मिल सकी, यहूदा को सेल्वेशन नहीं मिली क्योंकि John 6:64 के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह कहने लगे काफ़ी लोगों ने मुझे कबूल नहीं किया और उनमें एक मेरा पकड़वाने वाला भी है यानी जूडा।
जॉन क्या था
6:64। तो इसलिए ये अब तीसरा जो है वो खुदा के इलेक्शन का तरीका वो है इलेक्शन फॉर सल्वेशन। सो खुदा ने अपने डिवाइन इलेक्शन से निजात पाने वालों को मसीह के साथ एक कर दिया। ओके, यानी कि ये सब के लिए ये कॉलिंग है, उसकी क्या बुलावा है। जॉन 3:16 नहीं, खुदा ने दुनिया से ऐसी प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया।
सो इस इलेक्शन में लोग चुनते हैं।
हाँ, और ये नहीं, अब जिस तरह कई पॉल कहता है मुझे माँ के पेट से चुना था खास खिदमत के, वो वोकेशनल इलेक्शन में आ जाते हैं ना
जी कई लोग, लेकिन ये
सारों के लिए
थर्ड है इलेक्शन फॉर सल्वेशन। इसकी पावर लोगों के पास इन द सेंस ऑफ जो भी यीशु को एक्सेप्ट करे।
हाँ, देखे ना, ये प्लान यूनिवर्स बनने से पहले खुदा के दिल में था कि इंसान के पास ये चॉइस है कि खुदा को चुन सके। ठीक है, और इसके साथ जॉन 3:16 के साथ जॉन 11:26 में भी एक वर्स है जो कई है
जॉन
11:26 में, यानी जो कोई जिंदा और मुझ पर ईमान लाता है, देखे ना मरने के बाद कोई सेल्वेशन नहीं है ना। तो जॉन 11:26 में लिखा है जो कोई जिंदा और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। तू इस पर ईमान रखती है, लेडी को उसने कहा था। ठीक है, सो अब एक बात है कि खुदा का जो डिवाइन इलेक्शन और इंसान की आज़ाद मर्जी से है फ्री विल से यीशु को जो है वो कबूल करता है। कैसे कबूल करता है, इसमें रोमन्स 10 वर्सेस 9 and 10 के ईमान दिल से लाया जाता है, है? और इकरार मुंह से किया जाता है कि यीशु ही खुदावंद है, है ना। अब ये जो खुदा का डिवाइन जो इलेक्शन है और आज़ाद मर्जी या उसकी आप कह लें कि इलेक्शन फॉर सल्वेशन, ये दो मुख्तलिफ फैक्ट्स हैं। ठीक है,
सॉरी, क्या
दो मुख्तलिफ हकीकतें हैं, फैक्ट्स।
कौन सी दो?
के खुदा का चुनाव जो वो खुद चुन लेता है और जो इंसान होली स्पिरिट कन्विक्ट करता है ना, और फिर वो अपनी आज़ाद मर्जी से, ये दो अलग फैक्ट्स हैं। ठीक है, जो हम अपनी इंसानी अकल से समझ नहीं सकते ना, ये क्यों खुदा कभी चुन लेता है कभी नहीं चुनता है, क्योंकि हैं, अंडरस्टैंड और नॉट। एफिजन चैप्टर 1:4 बताती है, एफिजन चैप्टर 1:4 ये बताती है कि खुदा जो सब जमानों की सब बातें जानता है, यानी है ना, इंसान को बनाने से पहले खुदा जानता था कि इंसान गुनाह में पड़ेगा। ठीक है, मगर खुदा की ख्वाहिश थी कि इंसान खुदा की फेलोशिप के लिए ही रहता। और आज भी यही चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। फर्स्ट मिथी हाँ वो पढ़ दो.
Just as he chose us in him before the foundation of the world,
हाँ.
that we should be holy and without blame before him in love.
ठीक है, तो वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे. फर्स्ट में थी, वो चाहता है, हिज डिजायर आज भी यही है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे. फर्स्ट में थी चैप्टर 2 वर्सेस 3-5. इसलिए फॉर दिस रीजन उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा यीशु मसीह को, ताकि जीसस की राइचसनेस को हम पहन लेने से हम बाप की नजर में जस्टिफाई हो जाएं या मकबूल ठहरे. एफिजियन चैप्टर 1 वर्स 5 भी लिख लो. ठीक है, सो ये एक बात है. तो कोई हवाला और क्या था? यही था. हाँ, सो असल में जो, इसलिए मैंने वो वहाँ आपको पहले उसमें सेल्वेशन किसी के लिए फॉर ग्रांटेड नहीं है. वो हर एक को, वो रोमन्स चैप्टर 10 वर्सेस 9 और 10 के मुताबिक अपने गुनाहों का इकरार करना पड़ता है और यीशु को अपना पर्सनल सेवियर मानने से होता है,
वो गारंटी होती है.
हाँ, अब इसराइल कौम जो है वो जो आप वो देखे ना, अब इसराइल कौम के लिए है वो रोमन्स 11 में अगर हम देखें ना, है रोमन्स 11 में, तो वो 27 वर्स में अगर हम देखें, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, क्योंकि वो तो यहोवा याहवे को मानते हैं ना, मसाया को है. अब देखो वर्स रोमन्स
11:27-28.
हाँ, क्या है?
Yeah, for this is my covenant with them when I take away their sins. Concerning the gospel, they are enemies for your sake, but concerning the election, they are beloved for the sake of the fathers.
ठीक है, वो 29 verse.
For the gifts and the calling of God are irrevocable.
हाँ, अब ये कब, अब सुनना, ये कब believe लाएंगे जीसस पे? ज़करायाह 12:10, वो पढ़. क्योंकि अभी देखो इधर आप क्वेश्चन करना, मैं जवाब कोशिश करूंगा बाइबल से. ये फिर जीसस को उस वक्त मांगे कि जब इन पे सप्लीकेशन और ग्रेस की जो अनॉइंटिंग आएगी. पर कब आएगी? ये ग्रेट ट्रिबुलेशन में. देख जरा पढ़ दे, पहले नहीं, क्योंकि यहां तो वो दुश्मन है ना. फिर पता क्या, ये सारे कबीले रोएंगे. दे आर वो हमारे वो नहीं मानते ना, दे डोंट बिलीव कि मसाया आ गया. उस वक्त जब ये अनॉइंटिंग उन पे आएगी,
मतलब दुश्मन कैसे हो सकते हैं अगर खुदा के चुने हुए लोग हैं?
है?
अगर खुदा के चुने हुए लोग हैं तो दुश्मन कैसे हो सकते हैं?
देखो ना, ये अंजील, ये यहाँ अंजील के एतबार से वो तुम्हारी खातर दुश्मन है.
अंजील गॉस्पल,
गॉस्पल के लिए, गॉस्पल ओल्ड टेस्टमेंट के, वो तो नहीं मानते. लेकिन कब मानेंगे? जब ग्रेट ट्रिबुलेशन होगा, तो उसमें फिर इन पे ये अनॉइंटिंग भेजी जाएगी. जरा पढ़ना, फिर ये सारे कहेंगे ओहो, वो जो जीसस आया था ना, वो ही तो मसाया था. क्यों? इसलिए देखो वर्स 25 इसमें पढ़ना, नहीं रोमन्स 11 वर्स 25. अच्छा, आप ऐसे करो कि ये चूंकि हम ज्यूस से आगे नहीं हो सकते. अब देखो हाँ, क्योंकि
मतलब क्या,
अच्छा मतलब ये हो गया कि आगे वर्सेस लिख लो कि वी आर स्पिरिचुअल ज्यूस एंड दे आर जनरेशनल ज्यूस. स्पिरिचुअल ज्यूस जो हैं वो कैसे हम होते हैं? गैलेशियन चैप्टर 3 वर्स 14 लिखते जाना
वाइन
हाउ वी हाउ किस तरीके से हम स्पिरिचुअल ज्यूज है. गैलेशियन चैप्टर 3 वर्स 14, गैलेशियन चैप्टर 3 वर्स 29, एफिजियन चैप्टर 3 वर्स 6 के जीसस की गुड न्यूज़ पे बिलीव करने से हम इब्राहिम की नस्ल भी हैं और उसके वादे में भी शामिल है और इनहेरिटेंस में भी. ये ज़रा पढ़ दो, इस तरह करो ना, गैलेशियन 3:29 पढ़ दो और वहाँ से एफिजियन 3:6 पढ़ दे. सो पढ़
गैलेशियंस 3:14
हाँ 16 है
3:14 बोला
क्या हाँ 14 क्या बोला था
13 और 14 पढ़ती हूँ.
नहीं आपने कौन सा पढ़ रहे हो
गैलेशियंस 3:14
हाँ
अच्छा 13 और 14 पढ़ती हूँ. Christ has redeemed us from the curse of law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree, that the blessing of the Abraham might come upon Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith.
ठीक है, 29 भी पढ़ दे इसी. अब तीनों पढ़ दे ताकि पता लग जाए. Good news की वसीला से वो हम उनमें शामिल होते हैं.
If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise.
अब Ephesians 3:6 पढ़ दे.
This mystery is that through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel, members together of one body, and sharers together in the promise of Jesus Christ.
ठीक है,
इसका मतलब जू से आगे मतलब समझ नहीं है.
इसकी इसका मतलब ये है कि थ्रू गुड न्यूज हम इब्राहिम की बॉडी में, हम उसके प्रॉमिसेस में, हम उसकी इनहेरिटेंस में शामिल हैं थ्रू जीसस. अब वो जीसस जूस था, उसको जब ये मसाया मानेंगे ना तो फिर देखो कब मानेंगे.
मतलब आगे पीछे तो आई थिंक आगे पीछे का तो कुछ नहीं है फिर.
है
आगे पीछे का तो कुछ नहीं है फिर.
क्या आगे
मतलब आपने कहा कि स्पिरिचुअल जूस दूसरे जूस से जनरेशनल जूस से आगे नहीं है.
इसलिए ओके इसलिए देखें रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 16 से ऑनवर्ड पढ़ते जाओ आप. अब ये एक वार्निंग दी गई है उन लोगों को जो समझते हैं कि ज्यूज जो हैं वो कुछ भी नहीं है.
रोमन्स 11
16 से ऑनवर्ड पढ़ते जाओ आगे तक.
इफ द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द डो ऑफर्ड एज इट्स फर्स्ट फ्रूट्स इज होली देन द होल बैच इज होली. इफ द रूट इज होली सो आर द ब्रांचेस. इफ सम ऑफ द ब्रांचेस हैव बीन ब्रोकन ऑफ एंड यू दो अ वाइल्ड ऑलिव शूट स्पिरिचुअल ज्यूज have been grafted in among the others and now share in the nourishing sap of the olive root, do not consider yourself to be superior to the other branches. अच्छा मतलब आगे मतलब you better नहीं है
क्योंकि जड़ वही है. हम graft हुए आगे पढ़ दें.
हाँ अब समझ आई. अच्छा मेरा मतलब था आप कह रहे हैं कि generational Jews फिर भी आगे
कई Christians कहते हैं जी हम superior.
अच्छा
लेकिन वो नहीं. आगे देखना क्या कह रहा है. वार्निंग दी है
जी.
वर्स आपने
डू नॉट कंसीडर योरसेल्फ टू बी सुपीरियर टू दोज अदर ब्रांचेस. इफ यू डू कंसीडर दिस यू डू नॉट सपोर्ट द रूट बट द रूट सपोर्ट्स यू. यू विल से देन ब्रांचेस वर ब्रोकन ऑफ सो दैट आई कुड बी ग्राफ्टेड इन. ग्रांटेड But they were broken off because of unbelief, and you stand by faith. Do not be arrogant, but tremble. For if God did not spare the natural branches, He will not spare you either. हाँ तो मतलब दिल अपना साफ रखो.
रखो ये नहीं कि हम
that makes sense. Yes.
So ये बात इसलिए ये है.
अच्छा
देखे feast एक feast का भी लिख लो. Matthew chapter 8 verse 11. لکھ لو, ان کے بغیر فیسٹ نہیں شروع ہونی. انہوں نے ہمیں نہیں آنا, ہم ان میں شامل ہو رہے ہیں. دیکھ لو,
Matthew 8:11 کہتی ہے, I say to you that many will come from the east and the west and will take their places at the feast with Abraham, Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. But the subjects of the kingdom will be thrown outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth.
تو فیسٹ میں لوگ آئیں گے. اچھا, اب یہ کب بلیو کریں گے؟ کب بلیو کریں گے؟ زکریہ 12:10 کے مطابق جب یہ گریٹ ٹریبولیشن میں ہوں گے, پھر ان پہ یہ سپلیکیشن اور گریس کی انوائنٹنگ بھیجی جائے گی. پھر یہ کہیں گے, او ہو, وہ جو جیزس آیا تھا وہی تو مسیحا تھا. اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک ورس اور 25 ورس جو ہے نا وہ آپ نے پڑھنی ہے, کیوں خدا نے ان کو ابھی تک بلائنڈنس رکھی ہوئی ہے. وائے رکھی ہے, تو یہ رومنز چیپٹر 11:25 پڑھ دیں, تاکہ اور نیشنز بھی گھسیں. یہ تو گھسنے نہیں دیتے کسی کو, یہ وجہ ہے.
خدا ہمیں اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ
ہاں ساری دنیا کو, کیونکہ اس نے انسان کو اپنی لائکنس امیج میں بنایا نا. تو یہ تو باقی جو جنٹائلز تھے ان کو کہتے تھے دے آر سینرز اینڈ دے آر انہولی. دیکھ, پڑھ دے یہ کیا لکھا
ہے. ہاں, I do not want you to be ignorant of this mystery, brothers and sisters, so that you may not be conceited. Israel has experienced a hardening in part until the full number of Gentiles has come in. And in this way, all Israel will be saved. As it is written, the deliverer will come from Zion. He will turn godless away from Jacob. And this is my covenant with them when I take away their sins.
Okay. اب یہ کب ہوگا؟ Great Tribulation میں, زکریہ 12:10 میں. ٹھیک ہے, اب وہ پڑھ دو. تو خدا کا ایک سسٹم ہے. اگر ان کا ایک حصہ سخت نہ کرتا نا, ویسے تو ابھی بھی جیوز کرسچن ہو رہے ہیں, یہ نہیں, لیکن نیشن کی بات ہو رہی ہے, بات نیشن سے چلی تھی. تو خدا نے
I will strengthen them in the Lord and in his name they will live securely, declares the Lord.
آگے
بس یہ
زکریہ 12:10
I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and supplication. They will look on me the one they have pierced, and they will mourn for him as one mourns for an only child, and grieve bitterly for him as one grieves for a firstborn son.
Aake dekho sari unke jo qabile hain, padhte jao.
On that day the weeping in Jerusalem will be as great as the weeping of Hadad Ramon in plain of Megiddo. The land will mourn, each clan by itself, with their wives by themselves, the clan of the house of David and their wives, and the clan of the house of Nathan and their wives, the clan of the house of Levi and their wives, the clan of the house of Shimei and their wives, and all the rest of the clans and their wives.
یہ اس دن روئیں گے, یہ تو جس طرح کسی کا بچہ نہیں. اس وقت یہ ریولیشن کھلے گا. ہاں, جینیسس 12:2 کے مطابق, جینیسس چیپٹر 2 और 3 हम फिर एंड यहीं करेंगे वो
Genesis,
पढ़ दें
Genesis, क्या
Genesis चैप्टर 12 वर्स 2 एंड 3 ये प्रॉमिस देखो ये कवनेंट है ये
Genesis
12:2-3
I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing.
Aage.
I will bless those who bless you and whoever curses you, I will curse. And all the peoples on earth will be blessed through you.
Yeah. ठीक है तो इब्राहिम से ही इसहाक ने आना था ना
ये इसको क्या कहते हैं थियोक्रेटिक
थियोक्रेटिक इलेक्शन 3 इलेक्शंस है ना थियोक्रेटिक इलेक्शन
वोकेशनल
वोकेशनल इलेक्शन यानी कामों के लिए किसी को खुदा चुन लेता है और तीसरी जो है इलेक्शन फॉर सेल्वेशन इलेक्शन फॉर सेल्वेशन ये खुदा के 3 तरीके अब कई कहते हैं ना खुदा ने हमें बचाना होगा बचा लेगा सो दिस इज द आंसर ठीक है
yes, daddy, thank
God bless you.